हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 344। आदित्य की ऐसी जलीकटी बातें सुनकर उन सभी को बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग सीधे सीधे उसे कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए दोबारा से उसी तरह चाशनी घुले शब्दों के नीचे अपनी चालाकी छुपाते हुए बोले, आदित्य बेटा, ऐसी भी क्या नाराज़गी है तुम्हें हम लोगों से? और आखिर हम ही तो तुम्हारे अपने हैं। भैया के जाने के बाद से हमें तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है, लेकिन तुम हमेशा ही हम लोगों से दूर भागते रहते हो। आदित्य ने एकदम बेरुखी से उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि नहीं रहना मुझे ऐसे लोगों के आसपास जो इतने ज्यादा झूठे, धोखेबाज, चालाक और फरेबी हों। आदित्य के इस तरह सीधे इल्ज़ाम लगाने पर उसके चाचा चाची और बुआ के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। उन लोगों के पास शायद अब अपनी सफाई में बोलने के लिए शब्द भी नहीं बचे थे, या फिर वो लोग अपनी सफाई पेश करने के लिए सही शब्द सोच रहे थे। इन सब बातों के बीच उन सभी लोगों की आवाज़ भी थोड़ी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ आसपास के पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा था। कुछ लोगों की भीड़ भी वहाँ पर जमा हो गई थी, वो फैमिली ड्रामा देखने के लिए। और तभी डॉक्टर ने सबकी तरफ आते हुए कहा, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अपना फैमिली ड्रामा घर पर जाकर करिएगा, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर सिर्फ आप लोग ही नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। उस डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा और वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अरविंद उन दोनों के बीच आ गया और बोला, सॉरी डॉक्टर, बट कुछ अनवांटेड विजिटर आए हैं और उनसे इस तरह ही डील करनी पड़ती है। आज से पहले तो हम लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना आपके हॉस्पिटल में, और आगे भी नहीं होगी, मैं मेक श्योर करूंगा। डॉक्टर ने आदित्य और अपने बीच में खड़े हुए अरविंद से कहा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों ने इन्हें पहले ही क्यों नहीं रोका, क्यों यहाँ तक आ जाने दिया? आई होप अभी आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अरविंद ने तुरंत ही डॉक्टर की बात मानते हुए कहा, हाँ हाँ, हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे और अब हमारी वजह से किसी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। डॉक्टर की बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे ही लोग एकदम चुप हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वो लोग इतनी जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग फिर से वहाँ पर कुछ हंगामा तो करने वाले हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से अपने केबिन की तरफ चले गए। डॉक्टर के यहाँ से जाते ही अरविंद ने आदित्य की तरफ देखकर हल्के से अपना सिर हिलाकर इशारा किया, और आदित्य का इशारा समझते हुए अरविंद आगे आया और उन सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, आप लोग मेरे बॉस के रिलेटिव हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तक आने से नहीं रोका, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे, इसलिए अब अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। चाची ने आदित्य की तरफ देखकर उससे अरविंद की शिकायत करते हुए कहा, आदित्य बेटा, देखो ये क्या बोल रहा है तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, इससे बोलो हमसे तमीज से बात करे। अपनी नज़र चाची जी की तरफ करते हुए आदित्य ने एकदम एटीट्यूड में कहा, वो तमीज़ से ही बात कर रहा है चाची जी, और वैसे तो आप लोगों को तमीज़ के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है। उसके इस तरह से बोलने पर उसके चाचा थोड़े से गुस्से में बोले, आदित्य देखो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, अपना ये एटीट्यूड थोड़ा ठीक करो, नहीं तो बहुत पछताओगे, और वैसे भी तुमने क्यों सब कुछ उस कल की आई लड़की के नाम कर दिया, तुम्हें पता है ना उसमें हमारा भी हिस्सा था। उसकी बात सुनकर आदित्य एकदम जग जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, ये दैट्स इट, बस यही सुनना चाह रहा था मैं आप लोगों के मुंह से। मुझे पता है आप लोगों के पास यही एक वजह होती है जब आप लोगों को मेरी याद आती है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरे पापा की थी जो उन्होंने खुद मेरे नाम की थी, आप में से किसी का भी उसमें कोई हिस्सा नहीं है, और चाचा जी, आपको तो पहले ही अपना हिस्सा मिल चुका था, अब आप उसे बढ़ा नहीं पाए और ना ही संभाल पाए, तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। आदित्य ने उन्हें उनकी गलती याद दिलाते हुए कहा, और उसे अच्छी तरह से पता था कि वो लोग बातचीत चाहे जिस भी चीज़ से शुरू करें, उनका आखिरी और असल मुद्दा प्रॉपर्टी पैसे ही होता है, और इसके लिए ही वो लोग वहाँ पर भी आए होंगे, क्योंकि वो जानता है कि वो कितने गिरे हुए हैं, हॉस्पिटल जैसी जगह पर भी अपने फ़ायदे के लिए आ सकते हैं। आदित्य ने ये सारी बातें अपने चाचा चाची को सुनाई, तो ये सुनकर उन दोनों का जब सच से सामना हुआ तो दोनों का ही मुँह बन गया और वो बगले झाँकने लगे, लेकिन तभी उनके साथ खड़ी बुआ जी दो कदम आगे आते हुए तपाक से बोली, और मेरे हिस्से का क्या हुआ? दोनों भाइयों की इकलौती बहन हूँ, आखिर मेरे हिस्से कुछ आएगा या नहीं? आदित्य भी अपनी नज़रें उनकी तरफ करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों नहीं मेरी प्यारी बुआ जी, आपके हिस्से तो सब कुछ आएगा, बताइए क्या चाहिए आपको? बुआ जी ने भी उसी तरह चापलूसी करते हुए कहा, अरे वाह आदित्य बेटा, मुझे नहीं पता था तुम इतने प्यारे और समझदार हो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ टाइम नहीं बनना, अगर मेरे नाम हो जाता तो मेरे मरे हुए भाई की आत्मा को शांति मिल जाती, पता है भैया ने मुझसे वादा किया था कि वो बंगला मेरे नाम कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही। इतना बोलते हुए बुआ जी अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर लगाते हुए रोने की एक्टिंग करने लगी, और आदित्य उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसने गुस्से भरी नज़र उन सब की तरफ डाली और फिर उसी तरह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जरा सी भी शर्म नहीं है, और खुद को मेरे डैड की बहन बोल रही हो, उनकी आत्मा भी अब सोच कर रही होगी कि तुम्हारे जैसी बहन पाकर।
प्रॉपर्टी और पैसे घर की लालच में झूठ बोलती हो, वो भी किसी मरे हुए इंसान का नाम लेकर। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। उसकी इस बात पर बुआ जी की आंखें हैरानी से एकदम ही बड़ी हो गईं और वो सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पाईं। लेकिन चाचा जी ने उन सब की तरफ से बोलते हुए कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम हम पर केस करोगे, इसलिए बेकार की धमकी। उसके चाचा अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही आदित्य एक सख्त निगाह उनकी तरफ डालते हुए बोला, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कोई भी हंगामा नहीं चाहता, और अगर तुम लोगों को ये बेकार की धमकी लगती है तो फिर ठीक है, अगले दिन जब मेरा वकील तुम लोगों से बात करेगा तब खुद ही पता चल जाएगा। इस बार चाची जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोला, किस बात के लिए वकील, हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है, और इतने पैसों का तू क्या करेगा आदित्य, चुपचाप जितना हमारा हिस्सा है हमें दे दे और फिर हम कभी भी तुम्हारी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाएंगे। उन सब की बातें सुनकर आदित्य समझ गया कि वो सब इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं, इसलिए आदित्य एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, ठीक है, लीगली पेपर्स लेकर आओ और साबित करो कि मेरी प्रॉपर्टी में तुम में से किसी का भी हिस्सा है, मैं खुशी खुशी वो तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन अगर ऐसा साबित नहीं कर पाए तो फिर तैयार रहना, और अरविंद हटाओ इन लोगों को यहाँ से, बहुत हो गया। आदित्य की बात सुनकर अरविंद अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुरंत ही वहां पर आगे आया और आदित्य से उन लोगों को दूर करते हुए बोला, चलिए यहाँ से आप लोग, हॉस्पिटल है, ये सारी बातें करने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, और आदित्य सर भी नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ पर रहें, इसलिए प्लीज कोऑपरेट।
आदित्य की बुआ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रुकने का। आदित्य के चाचा ने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा, आदित्य तू एक दिन बहुत पछताएगा और तुझे ये सब अपनी करनी का फल भुगतना होगा। लेकिन आदित्य पर उनकी ऐसी खोखली धमकियों का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उन लोगों के साथ रहकर उसने जो कुछ भी झेला है उसके आगे ये कोरी धमकियां तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो एकदम मजबूती से बोला, बहुत भुगत चुका हूं मैं, और वो भी उस करनी का फल जो मैंने किए भी नहीं थे, लेकिन अब भुगतने की बारी तुम लोगों की है, तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। आदित्य को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल पाया, और अरविंद अब तक उन लोगों को साइड करते हुए लेकर वहां से दूर चला गया, और कुछ ही देर में वो लोग आदित्य की आंखों से ओझल हो गए। आदित्य जो इतनी देर से उन लोगों के सामने एकदम सख्त और एक्सप्रेशनलेस बनकर खड़ा था और लगातार उन लोगों को धमकियां दे रहा था, उन लोगों के वहां से जाते ही उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ नजर आने लगी, और उसने फ्रस्ट्रेशन से दोनों हाथों के बीच अपना सिर पकड़ लिया और वहीं रूम के बाहर पड़ी बेंच पर धम से बैठ गया। आदित्य अपने आप से बातें करते हुए बोला, क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों मुझे सुकून की जिंदगी जीने नहीं देते, और क्यों दूं मैं इन लोगों को पैसे, ऐसे तो इनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा और ये बार बार मेरी प्रॉपर्टी पर नजर गड़ा कर बैठे रहेंगे, नहीं मैं वो सविनय नहीं दे सकता, और वैसे भी अब मैंने सब कुछ सुनैना के नाम कर दिया है तो लीगली भी ये लोग मुझसे कुछ भी नहीं ले सकते, हाँ यही ठीक होगा। सब कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका दिया है और आंखें बंद किए हुए उस तरह से वहां सुनैना के रूम के बाहर बेंच पर बैठा है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है और उसने एकदम से चौंक कर देखा तो वहां पर नैना खड़ी हुई थी और स्वीटी उसके साइड में। स्वीटी का हाथ ही उसके कंधे पर था और उसने आदित्य को इस तरह देखकर कहा, क्या हुआ भाई, आप इस तरह से इतने परेशान लग रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या, भाभी ठीक तो? स्वीटी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नैना ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे ऐसा ना किया तो फिर भी अपनी बात पूरी नहीं की। आदित्य ने उन दोनों को नोटिस किया और वो स्वीटी की बात का जवाब देता हुआ बोला, अरे नहीं, तुम्हारी भाभी को कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले से काफ़ी ठीक है और मैं अभी उससे मिलकर बाहर आया और लोग आ गए थे, वही है मेरी परेशानी की वजह। आदित्य के इस तरह बोलने का मतलब कहीं ना कहीं स्वीटी समझ गई और वो उसकी तरफ देखकर एकदम धीमी आवाज़ में बोली, इसका मतलब मम्मी पापा भैया वो लोग आए थे क्या यहाँ पर? स्वीटी के सवाल के जवाब में आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए बस हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन बात पता चलते ही स्वीटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानती है। क्रमशः